नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, आपका स्वागत है।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और आईएसएल फुटबॉल लीग में जमशेदपुर एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए मुना, तो राजस्थान चौथे स्थान पर है और पांचवें नंबर पर गुजरात की टीम है। आज जो जीतेगी उसके लिए मैच एक लॉटरी से कम नहीं होगा।
बिल्कुल लॉटरी से कम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर है, 11 मैचों में 14 अंक है और इन दोनों टीमों के 12-12 अंक है। तो जो भी टीम जीतती है उसके पास दूसरे या हो सकता है पहले स्थान पर भी जाने का एक सुनहरा मौका हो।
जी बिल्कुल, एक सुनहरा मौका कि आप दूसरे स्थान पर तो कम से कम जाएंगे और अगर अच्छे अंतर से जीतते हैं तो पहला स्थान भी आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट।
जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, प्लेऑफ की दौड़ और भी रोमांचक होती जा रही है। इसी दौड़ में बने रहने की उम्मीदों को लिए कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, जहां केकेआर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराते हुए सीजन में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन लगाए। प्रथम निशंका ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 रन का योगदान दिया। केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने दो दो विकेट लिए। 143 रन के लक्ष्य को केकेआर ने 14 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। टीम के लिए जीत के हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के बाद कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को नई जान मिली है, जबकि दिल्ली के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
कोलकाता के लिए कल का मुकाबला किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने भी सोचा नहीं होगा कि दिल्ली अपने मैदान पे इतनी आसान जीत उसको दे देगी।
देखिए, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम दिल्ली के प्रदर्शन को देखें तो पैचेस में किसी मैच में उसके गेंदबाज चलते हैं तो किसी मैच में उसके बल्लेबाज चलते हैं। एक इकाई के रूप में जो प्रदर्शन की बात होती है वो दिल्ली अभी तक कर नहीं पाई है। 200 से ऊपर का स्कोर करके भी मैच हारी है दिल्ली की टीम। और अगर कल के मैच की हम बात करें तो केकेआर की यहां तारीफ करनी पड़ेगी कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट है जिसमें सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केकेआर की शुरुआत धीमी रही लेकिन लगातार 4 मैच जीते हैं टीम ने, और आप देखिए कि उसके जो टॉप ऑर्डर है, उसके जो फिनिशर है, उसके जो बॉलर है, सब जबरदस्त फॉर्म में। कल फिन एलन ने 5 चौके और 10 छक्के, उसमें एक छक्का 92 मीटर का था। तो जो आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कल उन्होंने किया है, पूरी तरह से दिल्ली के जो गेंदबाज हैं वो दबाव में नजर आए। और यहां पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो आईपीएल से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, बिल्कुल निराश किया उन्होंने। उनकी गेंदों में वो दिशा और दशा नजर ही नहीं आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहां पर दिल्ली को काफी निराशा। और मैच के बाद तो अक्षर पटेल ने बोला भी कि अब जो भी होगी प्लानिंग वो अगले सीजन के लिए होगी। मतलब टेक्निकली, मैथमेटिकली भले ही दिल्ली अभी कहीं ना कहीं प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन अंदर से टीम मैनेजमेंट समझ चुका है कि अब उनके लिए जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। और कोलकाता की जीत में फिन एलन ने निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया। कैमरन ग्रीन के साथ जो उनकी साझेदारी थी, शतकीय साझेदारी, वो काफी अच्छी रही। और यहां विशेष तौर पर बात करनी पड़ेगी एक ऐसे खिलाड़ी की जो शुरू से कोलकाता नाइट राइडर का ट्रम्प कार्ड रहा है, वह सुनील नारायण। 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, ऐसे आईपीएल में जिसमें गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी यहाँ पिट रहे हैं, ऐसे में ये इस तरीके का प्रदर्शन करना, अनुकूल रॉय गेंदबाजी के साथ जो एक कैच उन्होंने लपका था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि केकेआर जो है वो सही समय पर एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है और यहाँ से आगे उनकी राह मुझे आसान होती हुई नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, जिस तरह का कमबैक इस सीजन में केकेआर की तरफ से देखने को मिला, पहले 6 मुकाबलों में 5 हारे एक टाई और लगातार 4 जीत, तो टीम एक अच्छी पटरी पर है। वहीं दिल्ली के लिए मुश्किल ये भी होगी कि आने वाले 3 मैचों में पंजाब, राजस्थान और एक बार फिर कलकत्ता की टीम सामने होगी। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भी भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 8 भारतीय मुक्केबाज अंडर 15 में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच गए। ये खिलाड़ी अब फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि 5 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कान से पदक से संतोष करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ताशकंद में भारतीय मुक्केबाज अपने हर मुक्के के साथ एक नए पदक की आस भारत को दिलाते हुए।
और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है ना कि अंडर 15 और अंडर 17 आयु वर्ग के चैंपियनशिप है और यहाँ से जो निकलेंगे उनके लिए आगे जो बहुराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट होते हैं जैसे एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है या ओलंपिक है, उनके लिए यहाँ पदक जीतने वालों का मनोबल बढ़ेगा और जो भारत का पूल तैयार होगा, जैसे हम अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस के बाद ब्रिस्बेन या जो हम खुद आकांक्षा कर रहे हैं कि भारत में 2036 ओलंपिक हो, तो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी अच्छा यहां से एक्सपोजर मिलेगा इन खिलाड़ियों को जिनमें से भविष्य के लिए पूल तैयार होगा।
जी बिल्कुल, भविष्य के लिए पूल तैयार होंगे और ये मेडल इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अच्छा प्रदर्शन करने को और प्रोत्साहन लेकर के साथ आएंगे। और अब मुक्केबाजी के बाद रुख करते हैं तीरंदाजी का, जहां चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबे को 147-144 से हराया। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज साहिल जाधव ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक हासिल किया। ये विश्व कप में उनका पहला व्यक्तिगत पदक भी है। जाधव पहले सेट के बाद एक अंक से पीछे चल रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे सेट में परफेक्ट 30 का स्कोर बनाया, जबकि डेम्सबो 27 का स्कोर ही बना पाए। इससे जाधव को कुल 59-57 की बढ़त हासिल करने में मदद मिली और अपने अंतिम 9 तीरों में से केवल 2 अंक गवाकर 3 अंक की यादगार जीत हासिल की। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन निकोलस गिरार्ड से 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस पदक के साथ कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का भी समापन किया। भारत अब कल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर रिकवर स्पर्धा में 2 और पदक जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैट।
जो पदक भारत ने आज के लिए जीता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नजर कल होगी जहां पे स्वर्ण पदक के लिए वो भारतीय टीम जो कोरिया को हरा करके पहुंची है, 10 बार की चैंपियन कोरिया टीम को कल चीन सामने होगा, कितना दबाव होगा।
देखिए, सबसे पहले तो आज जो साहिल ने किया है उसकी बात करते हैं कि कंपाउंड में पिछली बार भारत को 5 पदक मिले थे और इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो इसको एक कॉन्सोलेशन कह सकते हैं कि, और वो भी साहिल जैसे युवा खिलाड़ी जिसके लिए ये दूसरा ही करियर का बड़ा पदक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीत चुके हैं और सामने बहुत ही अनुभवी तीरंदाज थे, पहले सेट में पिछड़ भी गए थे, उसके बाद भी जो शूटिंग और आर्चरी है नर्व्स का खेल होता है, एक सांस से बदल जाता है मुकाबला, तो वहां पर उसको कंपोजर बनाए रखते हुए उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर हम कल की बात करें रिकर्व में महिला टीम की, तो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद जैसे युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव और युवा खिलाड़ी का अच्छा तालमेल है। साउथ कोरिया को हराया है 10 बार की चैंपियन, मनोबल काफी बड़ा होगा और बड़े मुकाबलों में खेलने का काफी अनुभव दीपिका के पास है, अंकिता के पास है, तो मुझे लगता है कि ये जो चाइना से मुकाबला होने वाला है यहां पर वो अनुभव जरूर उनका काम आएगा। और पिछले कुछ अरसों में अगर हम प्रदर्शन को देखें, चाहे वो दीपिका हो चाहे वो अंकिता हो, कहीं ना कहीं एक निराशा होगी कि बड़े टूर्नामेंट में वो पदक जीतने में नाकाम रहे, तो उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और व्यक्तिगत वर्ग की अगर हम बात करें, सिमरनजीत, आप देखिए कॉम्पिटिशन का लेवल कि जब क्वालिफिकेशन हो रहा था तो दीपिका से 3 अंक से पीछे रह गई थी सिमरनजीत और टीम स्पर्धा में जगह बनाने में नाकाम रही, तो उनके पास भी अब एशियन गेम्स की पदक विजेता रह चुकी है, तो उनके पास भी एक नया इतिहास लिखने का ये सुनहरा मौका है।
जी बिल्कुल, जिस तरह का पहला चरण भारत के लिए रहा था, बहुत अच्छी नतीजे वहां से भारत के लिए नहीं आए थे, तो उम्मीद होगी यहाँ पे कम से कम कुछ पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया जाए। और बात करते हैं फुटबॉल की। ISL फुटबॉल लीग में जमशेदपुर FC और बेंगलोर FC के बीच मुकाबला जारी है। तक समाचार मिलने तक बेंगलोर FC ने जमशेदपुर पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में गोवा FC ने मोहन बगान FC के बीच साथ एक-एक से मुकाबला ड्रॉ खेला। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। भारत 44 साल बाद इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने बताया कि गुजरात इस प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे।
एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी पूरी है और 102 मेन और 77 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, एशियन चैंपियनशिप पहली बार हो रही है वो भी गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होना है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा भाई चानू को ज्यादा इंजरी नहीं है, थोड़ा सा उसने शोल्डर में पेन महसूस किया था, तो इसलिए कहीं ज्यादा इंजरी ना हो जाए उसको अभी रेस्ट दे दें। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत जरूरी है और एशियन गेम्स में, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया है।
इससे कुछ महीने पहले गुजरात ने ही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जहां भारतीय खिलाड़ियों का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। यहां पर क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी अपने भारोत्तोलन के खिलाड़ियों से भारत को?
बिल्कुल होगी, क्योंकि एक वैसे थोड़ा सा सेटबैक है कि मीराबाई चानू इसमें भाग नहीं ले रही है। हालांकि ये राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा होगा, और वो सही भी है, लेकिन दुनिया भर के काफी नामी गिरामी ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर होगा। और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है, तो यहां से काफी कोटा स्थान हासिल करने की उम्मीद है। और चूंकि गांधीनगर में हो रहा है और ये वही जगह है जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का अहमदाबाद मेजबान है, और ओलंपिक के लिए भी हम अहमदाबाद ही चुने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वहां किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। और आगे चूंकि ये बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है आगे, तो यहां से जितने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक मिलेंगे उतना ही मनोबल उनका बढ़ेगा।
जी बिल्कुल, मनोबल के साथ स्ट्रेंथ और फिटनेस मेंटेन रखने की भी परीक्षा कल से शुरू होगी, और देखा जाता है कि भारत के लिए ये प्रतियोगिता किस तरह से गुजरती है। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता में वीर चोटरानी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वीर ने कल पुरुषों के पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को 5 गेम तक चले मुकाबले में 14-12, 8-11, 5-11, 11-7 और 11-2 से हराया। चोटरानी कल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मिस्र के मुस्तफा असल का सामना करेंगे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन, वेलावन सेंथिल कुमार बाहर हो गए और अभय भी कल बाहर हो गए थे। और महिला वर्ग में भारत की तरफ से कोई चुनौती इस बार नहीं है इस चैंपियनशिप में अपने अपने कारणों से, तो भारत के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता ना गुजरती हुई अब तक।
बिल्कुल, लेकिन वीर चोटरानी का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां से वो भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे।
जी बिल्कुल, अच्छी खबरों की आस होगी। और बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता की, जहां नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज रेलवे और सेना की टीम का दबदबा देखने को मिला। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे ओलंपियन अनीश भानवाला ने आज पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नई दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा में आर्मी की यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता। तो एक प्रतियोगिता मुख्य रूप से भोपाल में खेली जा रही है, लेकिन कुछ मुकाबले इसके दिल्ली में भी चल रहे हैं, जहां भारतीय निशानेबाज जो लगातार है टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आता हुआ।
बिल्कुल, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज देखिए, अनीश भानवाला वहीं अभ्यास करते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल घर जैसा है, और ओलंपियन रह चुके हैं, पदक कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक विजेता है, तो उनके लिए चुनौती आसान थी और अपेक्षा के अनुरूप ही कहा जाएगा उनका प्रदर्शन रहा।
जी बिल्कुल। और अंत में चलते चलते एक बार स्कोर पे नजर डाल लेते हैं, जहां गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी है और गुजरात ने इस समय 14 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। मोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।